नमो भगवते वासुदेवाय। केवल नाहि अधर्मेन कुटुंब वरणोत्सुक जाति जीवन्धतामिश्रम चरमं तमस पदम। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है वो निश्चय ही अंधतामिश्र नामक गहनतम नरक में जाता है। अतो जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है वो निश्चय ही अंधतामिश्र नामक गहनतम नरक में जाता है। तात्पर्य। इस श्लोक में तीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल एनो का अर्थ है कुत्सित साधनों से। अधर्मेन का अर्थ है पाप पूर्ण अथवा अधार्मिक। और कुटुंब भरण का अर्थ है परिवार का पालन पोषण। निस्संदेह परिवार का पालन गृहस्थ का कर्तव्य है, किंतु उसे शास्त्र सम्मत विधि से ही जीविका कमानी चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान ने सामाजिक पद्धति को चार वर्णों जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। भगवद गीता के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्य के अनुसार ही जाना जाता है। उदाहरणार्थ लकड़ी का काम करने वाला बरई कहलाता है और लोहे तथा निहाई का काम करने वाला लोहार कहलाता है। इसी प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में लगे मनुष्य के विशेष कार्य तथा उपाधियां होती हैं। परमेश्वर ने इन समस्त मानवीय कार्यों को चार वर्णों में विभाजित किया, जिनके नाम हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र। भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथ में इन चार वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख है। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। उसे अनुचित ढंग से जिनके लिए वो योग्य नहीं है जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण का धर्म आचार्य के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है किंतु धर्म आचार्य का कार्य करता है, जिसका कार्य है अपने अनुजायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली बताना, तो वह जनता को ठग रहा होता है। मनुष्य को ऐसे अनुचित साधनों से धन नहीं कमाना चाहिए। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी लागू होती है। इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि जो लोग कृष्ण भावना मृत में अग्रसर होना चाहता है उनकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए। यह इसका उल्लेख है कि जो अनुचित साधन से केवल न जीविका उपार्जन करता है उसे गहनतम नरक में भेजा जाता है। अन्यथा यदि वह शास्त्रोक्त विधियों से तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है तो पारिवारिक व्यक्ति बनने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। श्रीमद् भागवतम। इस अध्याय का नाम स्कंद 3 अध्याय 30। इस अध्याय का नाम भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्म का वर्णन। अध्याय का लास्ट श्लोक का पहले वाला श्लोक है। केवल न ही अधर्मेन कुटुंब भरणोत्सुक जाति जीवन दतामिश्रम चरमम तमस पदम। तीस अध्याय में भगवान कपिलदेव ने उस व्यक्ति का जो तामसिक गति उसका वर्णन किया है। कौन व्यक्ति का, कौन व्यक्ति का वर्णन किया जो तामसिक गति प्राप्त करते हैं, जो जो पाप कर्म के द्वारा जीवन यापन करते हैं और अपना कुटुंब आत्मीय स्वजन बंधु बांधव का भरण पोषण करते हैं, जो सद उपाय में नहीं है, जो भ्रष्टाचार के उपाय से। आजकल ये शब्द बहुत फेमस है, भ्रष्टाचार के उपाय से जो परिवार का भरण पोषण करते हैं, उस व्यक्ति का जो तामसिक गति है उसका वर्णन करते हैं। और इस श्लोक में स्पेशली श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो केवलेन। केवलेन शब्द सिर्फ प्रभुपाद जी बताते हैं केवलेन सिर्फ वो एक ही उपाय से, भ्रष्टाचार उपाय से। केवलेन कुत्सित उपाय से, यह प्रभुपाद जी बताते हैं कुत्सित साधनों से। केवलेन उसका वही एक ही लक्ष्य है जो इस प्रकार हम अर्थ कमाएंगे। और दूसरा है अधर्मेन ही, अधर्मेन ही मतलब निश्चित ही वो धर्मों का पथ अवलंबन नहीं करेंगे, अधर्मों के रास्ता से कुत्सित उपाय से धन कमाएंगे। फिर उसका परिणाम क्या होता है, वो अर्थ से वो क्या करते हैं, कुटुंब भरणोत्सुक अपना कुटुंब का भरण पोषण करते हैं। आत्मीय स्वजन जो देह और देह का साथ संपर्कित जो रिलेटिव है, आत्मीय स्वजन है, उनका भरण पोषण करते हैं। फिर बाद में उसका गति देखिए, एक ही लाइन में उसका पूरा गति भी बता दिया। सॉरी लास्ट अन तमस पदम, लास्ट में इस श्लोक का लास्ट शब्द में देखिए उसका गति बताया, जो तमस पदम वो अंध तामिश्र नामक नरक में जाते हैं। तो ये क्लियर है जो केवल न सिर्फ कुत्सित भ्रष्टाचार उपाय से धन कमाते हैं और वो धन निश्चित ही अधर्म की रास्ता से वो उपार्जित करते हैं और उस धन से वो कुटुंब भरण पोषण करते हैं और वही उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है। और इसलिए इस प्रकार व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद जी बताया गृह मेधी। गृह मेधी मतलब जो सब कुछ काम करके सिर्फ गृह में जिसका चिंतन है, गृह को किस प्रकार अच्छा से अच्छा पालन पोषण भरण पोषण कर सके, वो गृह मेधी है। और गृहस्थ शब्द प्रभुपाद जी बहुत सरल व्याख्या करते हैं, जो गृहस्थ में रह के जिसका चिंतन सिर्फ कृष्ण का चरण में लगा रहता है वो गृहस्थ है। तो यो गृह मेधी जो सिर्फ कुटुंब भरणोत्सुक है और जाति जीवन दतामिश्रम चरमम तमस पदम, अल्टीमेटली वो उस अंध तामिश्र नामक नरक में वो जाते हैं, उसको भेज दिया जाता है। और वहां पर उसके लिए बहुत सुंदर स्वागत की व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। और वो सब आदमी है बहुत कुछ देखने में है जमदूत, और उसको एक जातना शरीर प्राप्त होता है और उस जातना शरीर में उसको बहुत साल तक उसको वहां पर भोग करना पड़ता है, कर्मफल की भोग करना पड़ता है। फिर जब कर्मफल खत्म हो जाता है फिर उसको इस संसार में भेज दिया जाता है मनुष्य शरीर में, अल्टीमेटली मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं जिससे कि वो भक्ति करके भगवत धाम लौट सके। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कोई प्रश्न उठा सकते, जैसा पिछले श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी क्वेश्चन उठाया कि अगर हम कर्म कर रहे हैं और कर्म करते करते जब हम अर्थ उपार्जन किया है, तो जब हम ये अर्थ सब छोड़ के यही छोड़ के जाते हैं, सब यही छोड़ के हम चला जाते हैं, तो हमारा हमें क्यों पनिशमेंट भोगना पड़ता है? हम तो सब छोड़ दिया यार, तो हमें पनिशमेंट क्यों भोगना पड़ेगा? तो प्रभुपाद जी उसका खंडन करके बताते हैं, जिस प्रकार कोई चोरी किया है और चोरी करने के बाद उसका जो संपत्ति वो चोरी करके लेके आए थे वो सब ले लेते उससे, फिर बाद में उसको चोरी करने का जो दंड है वो भी भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो अर्थ उपार्जित किया भ्रष्टाचार उपाय से, तो उसको उस कर्मों के लिए उस जातना शरीर के द्वारा उसको उस कर्मों का भोग करना पड़ता है। इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण है, जैसा कि इस संसार में व्यक्ति किस प्रकार काम वासना द्वारा मोहित होकर पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। कान्ना कुब्जो में अजामिल का कहानी हमें सबको मालूम है, अजामिल किस प्रकार संसार का भरण पोषण करने के लिए कितना सारे कुत्सित उपाय को अवलंबन किया है, और अल्टीमेटली उस अजामिल का कहानी से हमें प्राप्त होता है कि हरिनाम की महिमा, एक हरि नामे जत पाप हरे जीवेर की साध्य आसे तत पाप करे। तो हरिनाम की महिमा को हम जानते हैं कि हरिनाम का आश्रय लेने से हमारा जितना पाप है, बाहर सदृश पाप क्यों ना हो, वो तुरंत जल के राग हो जाता है। तो हमें अल्टीमेटली हरिनाम की आश्रय बहुत सीरियसली लेना चाहिए, जिससे कि हम ये सारे जो पिछले कई जन्म का जो पाप कर्म है वो हम धुल सकते, मतलब उसको हम खत्म कर सकते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, संसार बाटवारे काम फांसी बांदी मारे फुकार करो हो हरिदास। इस संसार रूप जो संसार, इस यहां पर बताते बाटुआर, बाटुआर मतलब डाकू है। वो डाकू क्या है? काम भोग की जो वासना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो ये सारे बाटुआर है, डाकू है। ये डाकू क्या करते हैं? हमें बांध के पिटाई करते। जैसे कि आप जंगल के रास्ते में भाई का कि आप कई रास्ते में जा रहे हैं और आपको डाकू आया और आपको सारे संपत्ति छीन लिया, फिर डाकू अपने को बचाने के लिए आपको खत्म भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो डाकू है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि डाकू है, वो हमारा सबका साथ है। तो इसलिए बताते हैं संसार में ये जो डाकू है ये हमें बांध के हमेशा पिटाई कर रहा है। तो बताते हैं अगर हम भगवान का जो भक्त है उसका शरणापन्न हो गया, फुकारे डाको हरिदास, हरिदास मतलब हरि की जो दास है, उनका जो सेवक है, उनका जो भक्त है, उस भक्त का अगर चरण आश्रय लिया है तो ये सारे डाकू से हम बच सकते। जैसे कि आप अकेला नहीं है, बहुत सारे आदमी के साथ जा रहा है तो डाकू आपको अटैक नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर हम साधु संघ में हैं और साधु संघ में हरिनाम करते हैं तो ये डाकू से हम बच सकते हैं। इसलिए बताते हैं साधु संगे हरिनाम यही मात्र चाहिए, संसार जीने ते आर अन्य उपाय नहीं। इस संसार रूप जो बंधन, इसको छिन्न करने के लिए, इसको जीतने के लिए एक ही उपाय है, साधु संग में हरिनाम। ऐसा नहीं है मैं अकेला जाके कोई जगह में बैठ जाऊंगा, योग का पंथ अवलंबन करेंगे और ज्ञान की पंथ अवलंबन करेंगे किंबा मायावादी व शून्यवादी का पंथ अवलंबन करेंगे, नहीं। उस उपाय से आप कुछ भी नहीं कर सकते प्रगति आध्यात्मिक लाइफ में। जब तक आप भगवान का चरण में आश्रय नहीं लिया, भगवान का भक्त में चरण, भक्त का चरण में आश्रय नहीं लिया, तब तक हम इस भवबंधन से मुक्त नहीं कर सकते अपने आप को। इसलिए बताते हैं जैसम संसरणम पुंसाम सद्य शुद्धन्ति वही गृहात। अगर कोई साधु का, कोई वैष्णव का अगर स्मरण भी किया कोई, जेसम स्मरणम पुंसाम शुद्ध शुद्धन्ति, साक्षात शुद्ध हो जाता है। कोई साधु वैष्णव का अगर स्मरण भी करते, कोई शुद्ध भक्त का भगवान का, नारद मुनि आदि जैसा बहुत सारे भगवान का शुद्ध भक्त है, उनका नाम स्मरण करने से शुद्ध शुद्धन्ति वही पुंसाम, हम तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। और अगर किम पुनर्दर्शन स्पर्शम नम, अगर उनका दर्शन किया, उनका सेवा किया, पाद शौचनम आदि भी, अगर पाद सम्मान आदि और उनका सेवा किया, तो कहना ही क्या है, हम तुरंत ही इस भाव सागर को जीत सकते हैं। इस भाव सागर का जो भाव बंधन को हम जीत के हम भगवत धाम लौट सकते हैं। और इस भौतिक संसार का जो बंधन के बारे में एक बार भगवान बुद्ध देव जा रहे थे अपना संदोक, अपना सर्वेन का साथ, सर्वेन का नाम था संदोक, उस संदोक का साथ जा रहे थे। और भगवान बुद्ध देव देख रहे थे कि इस भौतिक संसार का जो भोग है ये कितना खतरनाक है, तो उन्होंने संदोक को बता रहे थे, ये संदोक, ये जो भोग है देखो ये वाद्रूप है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये अद्रुव है, और आगे ये अनित्य है, ये नित्य विराजमान नहीं रहता है, ये अनित्य है, और ये अल्टीमेटली इसका परिणाम क्या है, ये दुखजनक है, ये काफी दुख को पैदा करने वाला है, जो सुख के लालच में आधर्मिक उपाय से भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, वो एक्चुअली अल्टीमेटली वो क्या प्राप्त करते हैं, दुख इस संसार में भी और तमस पदम प्राप्त करके नरक में। फिर बताते हैं वो बहुत चपल है, ये जो सुख है चपल सुख लभ लागिले, ये सुख बहुत ही चपल है, जिस प्रकार, और ये चपल है, और इसको आगे बताते हैं, इसका एक एक का मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, आगे बताते हैं, ये जो नदी, नदी का पानी जो पहाड़ से गिरता है उसका जो वेग है उस प्रकार ये वेगवान है, पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसको पकड़ने गया तो आपको भी बहा ले जाएगा, ये बहुत ही वेगवान है। और जो सुबह का कुहरा का जो शिशिर घास के ऊपर पड़ता है, उस घास का बिंदु की भांति वो है, टलोमलो है वो सुख, कभी भी वो गिर सकता है। इसलिए वो सुख की बात क्या है, हमारे आचार्य लोग बताते हैं, जो हमारा जो जीवन है वो वैसा है, कोमलो दलो जलो जीवन और टलोमलो, इस क्षणस्थाई शरीर इतना टलोमलो है, ये कब मर जाएगा पता नहीं है, और ये सुख भोग करने के लिए भागता है, कितना मूर्खता है। फिर बताते हैं ये शोकेर उत्पाद उत्पादयिता, शोक उत्पादन करते हैं, बच्चा मर गया, पिता मर गया, क्योंकि ये संसार का एक नाम है मृत्युलोक, और ये एक ही काम होता है मृत्यु, और सब कुछ एक्चुअली अल्टीमेटली नष्ट हो जाता है, तो ये शोक पैदा करता है, ये शोक के उत्पादयिता, बहुत शोक पैदा करता है ये भौतिक सुख। फिर इसको बताते हैं जे जादू की हाथ, हाथ में जादू को जैसे हाथ में कुछ रखा है मुष्टि में, और तुरंत उसको तुरंत गायब कर देता है, 5 रुपया का जो कॉइन्स है तो तुरंत गायब कर देता है, तो ये मुष्टि में पकड़ लिया और तुरंत गायब हो जाता है, ये फाकीबाज है, जादू की भांति फाकीबाज है ये सुख। और ये शरद काल की इसको आगे बताते हैं, जो एक प्रकार वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम बताते हैं कदली वृक्ष, उस वृक्ष का जो स्कंद है वो स्कंद बहुत ही नरम है, सख्त नहीं है, मजबूत नहीं है, तो बताते हैं ये जो भौतिक ये भोग सुख ये उसी प्रकार दुर्बल है, कदली वृक्ष का स्कंद की भांति ये दुर्बल है। और आगे बताते हैं अगर कोई कासा कुछ वस्तु खा गया तो पेट में बहुत पीड़ा होता है, तो उसी प्रकार है ये कच्चा मतलब पका हुआ वस्तु नहीं है, कच्चा वस्तु अगर भोजन किया तो पेट में जैसा पीड़ा देता है उसी प्रकार है ये। ये बहुत ही वेदनादायक है, शरद काल की मेघ की भांति है, ये क्षणस्थायी है। और इसको और भी आगे भगवान बुद्ध देव बताते हैं कि ये दुष्पूरणीय है, सागर की भांति गहरा है, इसको कभी फील अप नहीं किया जा सकता है, इतना दुष्पूरणीय है। ऐसा एक लाख रुपया बन गया तो तुरंत सोचते हैं कैसे इसको दो लाख करें, दो लाख हो गया इसको चार लाख करें, राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छा से व्याख्या करते हैं। तो आदमी इस प्रकार बढ़ाते जाते हैं और खाते हैं और दो रोटी खाते हैं, चार रोटी खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते, लेकिन इस प्रकार बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ये इतना दुष्पूरणीय है, इस भोग की लालच, अर्थ संपत्ति कमाने का जो लालच है, ये कभी खत्म नहीं होता है। बलि महाराज का उस कहानी से हमें पता चलता है, जो बलि महाराज जो भगवान वामन देव बलि महाराज को उपदेश देते हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, तीन पद भूमि में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आपने हे बलि महाराज आपने ये त्रिलोक को जीत लिया है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, आपको और चाहिए। इसलिए आदमी को संतुष्ट होना चाहिए, जो प्राप्त किया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और ये तृष्णा वर्धक है, जैसे हम कोई मरुभूमि में पानी का प्यास लगा है और एक बिंदु पानी मिला है उसको, तो और भी पानी प्राप्त करने के लिए उसको चाहिए, तृष्णा और भी बढ़ता है, थोड़ा सा पिया और भी तृष्णा बढ़ गया। तो ये तृष्णा वर्धक क्या है, ये खत्म नहीं होता है। इसलिए इसका उदाहरण देते हैं जी, आग में घी डालने की भांति है, जितना घी डाले आग उतना बढ़ता जाता है। और इसको आगे बताते हैं भगवान बुद्ध देव ने, ये सांप की जो शीर है वो शीर को स्पर्श करने की भांति है, मतलब दुष्स्पर्शनीय, बड़ा कठिन है उसको स्पर्श करना। सांप जो विषधर सर्प है उसका शीर को स्पर्श करना जितना कठिन है, उसी प्रकार कठिन है ये भौतिक सुख प्राप्त करना। फिर भगवान बुद्ध देव ने बताते हैं ये पंडित लोग ये सारे समझकर इसको परिवर्जित है, पंडित कत्रिक पंडित के द्वारा ये परिवर्जित है, और इसमें भय विषाद अभिमान ये सारे दोष है, इसलिए जो बुद्धिमान प्राज्ञ गुण है उसके द्वारा ये विवर्जित है, और जो विद्वान गुण है वो उसके द्वारा ये निंदित है, विगृहित है, और अर्जगुण की द्वारा जुगुप्सित है, बुध गुण के द्वारा परित्यक्त है, और मूर्ख गुण द्वारा जो मूर्ख है वो इसको ग्रहण करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए लेते हैं, परिगृहित है, और जो बाल बुद्धि वाले व्यक्ति है उसके द्वारा ये सेवित है। देखिए दो कैटेगरी का व्यक्ति के द्वारा ये, एक तो मूर्ख है और एक है बाल बुद्धि व्यक्ति, इस बाल बुद्धि व्यक्ति के द्वारा ये सेवित है। तो भौतिक सुख का पीछे भागना यह बताते हैं, जो मूर्ख है जो भगवान बुद्ध देव बताते हैं, जो मूर्ख है और जो बाल बुद्धि है वो इसको लेते हैं। एक प्रभु ने उदाहरण देते थे दे रहे थे कि इस भौतिक संसार का जो भौतिक भोग है, अगर वो अपना ओर हमने खींच लिया तो उसका गति तमसा गति। इसलिए इस भोग से बचने के लिए, जैसा कि समुद्र में कोई पानी में गिर गया, समुद्र का बीच में पानी में गिर गया तो पानी अपना ओर आपको खींचे, नदी में पौन में कोई पानी अपना ओर खींचे तो क्या होता है, वो पानी में डूब जाते हैं। तो उसके लिए, उसको बचने के लिए पानी को तैरना पड़ता है, पानी को अपना ओर से भागना पड़ता है, तो तैर सकते हो। भौतिक भोग को लात मार के हाथ से पैर से उसको निकलना पड़ता है, जी हमारा पास ना आए, हमारा पास ना आए। अगर वो अपना ओर खींचा तो डूब जाते हैं। तो जो बुद्धिमान है वो इसको विवर्जित, इसको उस प्रकार लात मार के फेंक देते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं एक श्लोक में, जो इस प्रकार विद्या, भौतिक विद्या, जो जो इस संसार का जो विद्या है, आजकल का जो टेक्नोलॉजी का जो इंटेलिजेंट विद्या है आदि, इस प्रकार विद्या और इस भौतिक धन और धन आदि, भौतिक धन आदि, और जो अच्छा कुल में जन्म लिया है उस कुल का अभिमान, इस प्रकार अगर किसी का है और देह, और देह की संपर्कित सारे आत्म स्वजन, इसमें जो अभिमान है और इसको नित्य बुद्धया, इसमें नित्य बुद्धि मानते हैं जो व्यक्ति, और उस अन्य देवताओं में देवताओं को जो इष्ट देव मानते हैं, अन्य देवता को जो इष्ट देव मानते हैं, वो जीवित रहते हुए भी वो मृत है, जीवित रहते हुए भी और मृत है, और वो कभी न लभन्ते केशव, वो भगवान केशव के चरण को वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अभिमानी भक्तिहीन जग मजे सही दिन वृथा तार अशेष भावना। जो अभिमानी है वो भक्तिहीन व्यक्ति है, और इस संसार में वही श्रेय हीन व्यक्ति है। जग मजे सही दिन भक्तिहीन व्यक्ति भगव मजे वही श्रेय दरिद्र है, गरीब आदमी है, हीन व्यक्ति है, और इस संसार में उसका वृथा उसका जीवन है, था उसका भावना है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो कुटुंब भरण, देखिए कुटुंब भरणोत्सुक, काल का इंग्लिश भागवतम श्लोक में था ये शब्द, एग्जैक्टली लगता है काल का इंग्लिश भागवतम श्लोक और आज का श्लोक लगभग सेम है। सजनाक्य दस्यु, श्रील प्रभुपाद जी ये शब्द को वहां बता रहे थे, सजनाक्य दस्यु, और उसका वर्णन करते हुए सजनाक्ष दक्षु का प्रभात जी पर्पट में बता रहे थे कि जो संसार का जो स्त्री, संसार संसार का जो फैमिली है, ये एक, एक जंगल की भांति है। जैसे जंगल में बहुत सारे पशु लोग रहते हैं, लेकिन वो हिंगच्छर रहते हैं, बाघ भालू आदि जो पशु है वो हिंगच्छर है, लेकिन ये संसार में जो परिवार का जो सदस्य है वो हिंगच्छर नहीं है, हिंगच्छर नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये नॉन वायलेंस एनिमल है, अपना स्त्री पुत्र बाल बच्चा को ये उदाहरण ये बता रहे थे काल के श्लोक में इंग्लिश भागवतम में। अरे सजनाक्य दस्यु है, ये दस्यु प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे कि जैसा कि कोई काम करके घर वापस आए, तो अगर रास्ता में उसको दस्यु लोग, गुंडा लोग उसको पकड़ लेते हैं, तो उसका सारे संपत्ति उससे छीन लेते हैं। लेकिन वही सेम व्यक्ति वहां पर अगर दस्यु लोग छीन लिया संपत्ति, तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और तुरंत सीबीआई तदंत तो क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति धन कमा के जब घर में आए तो उस घर में उसको जो नॉन वायलेंस एनिमल है वो सब छीन लेते हैं उनसे, लेकिन उसका कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करते। वो और भी खुश होते हैं, हंसते रहते हैं। शर्मा प्रभु बताते हैं वाइफ ने ये नाइफ है, चाकू से पकेट मार लेते सारे, और वो खुश में हंसते रहते हैं, ये उसका प्रेम है संसार में। सजनाक्य दस्यु, तो कुटुंब भरण के लिए जो व्यक्ति इस प्रकार इस क्षणस्थायी सुख के लिए, आत्म स्वजन और बंधु बांधव के लिए असत उपाय में इस प्रकार अर्थ कमाते हैं, दिन रात परिश्रम करके, रात को निद्रा जाते हैं किंबा मौथुन में कटाते हैं, और सुबह उठ के पैसा के लिए भागते हैं, और उस पैसा का उद्देश्य है संसार पालन पोषण करना। इस प्रकार और पैसा से कुछ खरीद करने के लिए वो दिन भर व्यस्त रहते हैं, और इस प्रकार वो दिन बच जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति कभी भगवान का भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, और भक्ति परसानुभव विरक्ति अन्यत्र सा। अगर कोई इसमें विरक्ति है, इस प्रकार काम से विरक्ति है तो वो भगवान को भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वो अनइंटरेस्टेड है, इस प्रकार कार्यों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भगवान का भक्ति को प्राप्त कर सकते। बिना हरेर गुणों पीयूष पानात, अगर कोई हरि का गुणगान नहीं सुना है, वो पान नहीं किया है, श्रवण नहीं किया है, तो वो भगवान का भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा संसार से विरक्त तो मानकर जंगल में बैठ के योग की पंथा अवलंबन कर सकते हैं, ज्ञान की पंथा अवलंबन कर सकते हैं, मायावादी व शून्यवादी का पंथा अवलंबन कर सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली फॉल डाउन हो जाता है, फिर भौतिक भोग में आके गिरता है। इसलिए जीवन में अरिंदाक्ष विमुक्त मानिनास तस्य भावात अविशुद्ध है बुद्धयो, उसका बुद्धि अविशुद्ध रहता है। जब तक वो भगवान का भक्त की शरण में शरण नहीं ग्रहण किया, भगवान का भक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया है, तब तक उसका बुद्धि अशुद्ध रहता है, अविशुद्ध रहता है, विशेष रूप में वो अशुद्ध रहता है उसका बुद्धि। इसलिए भगवान का भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भक्त का शरण में आना चाहिए। और सिन्वनम सकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयांतस्थय भद्राणी विदनति श्रुतम, और इस प्रकार उसका हृदय के सारे जो कलमोश है वो विदनति श्रुतम, वो धोके साफ हो जाता है। और यही है जीवन का लक्ष्य। देखिए कुटुंब भरणों, हमें कहानी याद आते हैं आ रहा है, अभी काली में जगन्नाथपुरी से आया, तो हम इस भौतिक संसार का कुटुंब आत्मसुजन को हमने बंधु मानते हैं, लेकिन जगन्नाथ के एक भक्त था जो सिर्फ जगन्नाथ को अपना बंधु मानते थे, उसका नाम था बंधु महांती। जगन्नाथपुरी से ज्यादा दूर नहीं है, पास एक गांव है, उस गांव का नाम था जसपुर, और उस जसपुर गांव में वो भक्त रहते थे। उनका चार बच्चा है, तीन चार बच्चा है, और ब्राह्मणी है, ब्राह्मण परिवार के परिवार से है, ब्राह्मण ब्राह्मणी और चार बच्चा लेकर उस गांव में रहते थे। और ब्राह्मण का जो धर्म है पठन पाठन जजन जाजन, इस प्रकार करके भिक्षा करके परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक बार वहां पर खोड़ा आ गया, अनावृष्टि हुआ है, तो अनावृष्टि हुआ है तो धान का उत्पादन नहीं हुआ है, फसल का उत्पादन नहीं हुआ है, तो भिक्षा करने जाते हैं तो कोई भिक्षा नहीं देते, सबका घर में अकल पड़ गया है। तो जब भिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं कर पाए तो सब अनाहार में है, खा नहीं पा रहा है। तो उसका पत्नी ने स्वामी को रिक्वेस्ट किया, स्वामी क्या आपका कोई बंधु नहीं है? तो बोला एक बंधु है मेरा, और वो बंधु है वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो उसका स्त्री ने बताया तो चलो ना अपना बंधु का पास जाके रहते हैं कुछ दिन, फिर वहां से जब हम यहाँ का अकाल खत्म हो जाएगा तब फिर वापस आएंगे, कुछ दिन उनका घर में रहते हैं। तो उसका पत्नी का रिक्वेस्ट में चार बच्चा के साथ वो लोग चल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। और जगन्नाथपुरी की ओर जब चल पड़े, तीन दिन रास्ता में कुछ खाया नहीं, पानी पिया, कुछ ना कुछ करके कैसे भी वो जगन्नाथपुरी आकर पहुंचा। रात हो गया और जगन्नाथपुरी में रात संध्या का टाइम, चारियों सिक्योरिटी पहरादार है, और इस ब्राह्मण ब्राह्मणी और इसका बच्चा का जो कपड़ा है बहुत गंदगी से भरा है, और भिखारी देखकर उसको अंदर घुसने नहीं दिया, चौकीदार अंदर घुसने नहीं दे रहा है जगन्नाथ मंदिर में, और अभी बंद होने का टाइम हो गया मंदिर। तो जब मंदिर में घुसने नहीं दिया तो पत्नी ने पूछा, आपने बोला आपका आपका बंधु का घर है और आपका बंधु का घर में आपको घुसने नहीं दे रहा है? तो वो बता रहा है, देखो मेरा बंधु बहुत बड़ा रिस्क मैन है, और देखो ना इस इतना सारे सिक्योरिटी पहरादार है, और बंधु को पता कैसे है कि मैं आ गया, तो ये सिक्योरिटी लोग हमें घुसने नहीं दे रहा है ना, कोई फंक्शन चल रहा होगा अंदर में, इसलिए बिजी है। तो ऐसा करते हैं हम लोग यही पर सो जाते हैं, ये था दक्षिण द्वार में, बोले यही पर हम सो जाते हैं, और सुबह तक बंधु जब जग जाएंगे, सुबह हम प्रवेश करेंगे बंधु को मिलने के लिए जाएंगे। तो पत्नी बहुत सरल सीधा थी, बोला ठीक है, लेकिन बच्चा को क्या खिलाएं? तो कुछ पानी फानी कुछ इधर से उधर से मांग के थोड़ा बहुत लिक्विड खिला के पिला के बच्चा को सुला दिया, लेकिन नींद नहीं पा जा रहे थे, कोई सब भुकाते, किसी को नींद नहीं आ रहा था। और इधर भगवान का भक्त को जब नींद नहीं आ रहा है तो भगवान को भी नींद नहीं आ रहा है उधर अंदर। तो भगवान ने क्या किया, सीधा अपना भंडारा में पहुंच गया और वहां से स्वर्ण का थाली में छप्पन भोग अपने हाथ से सजाया, सजाकर आकर वहां पर आकर एक ब्राह्मण का वेश में सद्य वेश में आकर भगवान ने पूछ रहा है, बंधु महांती। तो वो नीचे उठ गया, उठ के सोच रहा है शायद यहाँ पर बंधु बोल महांती बोल के बहुत सारे आदमी है, शायद कोई किसको बुला रहे होंगे। तो फिर सो गया। फिर भगवान स्पेशली, तुम सो मत, मैं तुमको ही बुला रहा हूं, बंधु महांती उठो। तो वो उठ गया, बोला मुझे ही बुला रहा है स्पेशली। तो आया, आके देखा एक ब्राह्मण थाली में छप्पन भोग सजाकर रेडी है देने के लिए, और भगवान ने बताया ले जाओ और अपना बाल बच्चों को सबको खिलाओ सोला दो और कल सुबह तुम्हारा व्यवस्था हो जाएगा। तो वो थाली को लेकर आए, सब लोग मिलके उसी थाली में बैठ के खाए, रात को दिखाई नहीं दिया, सोना का थाली है क्या थाली है, चक चक कर रहा है एक थाली, तो उसी थाली में भगवान का थाली में वो लोग खाए, सब लोग मिलके खाकर वो थाली देने के लिए वापस आए। तब तक तो ब्राह्मण नहीं है, भगवान नहीं है, और वो थाली को अपना एक पुटली में कपड़ा में बांध के रख दिया, वही बस हो गया। लेट नाइट में खाकर सोने से बहुत अच्छा नींद आता है, सुबह तक नींद में गहरा नींद में है। और इधर सुबह जब सुबह हो गया, जगन्नाथ मंदिर में पुजारी लोग, हेड पुजारी जब प्रवेश किया, देखा सोने का थाली गायब है, तो तुरंत राजा को रिपोर्ट हो गया, चारी और पुलिस फोर्स निकल गया थाली ढूंढने के लिए, और थाली ढूंढ रहा है, कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। और इधर ये लोग सो रहा है, दूर से दिखाई दे एक पुलिस को जो सोने का थाली उस कपड़ा का अंदर से सोने जैसा चक चक कुछ निकल रहा है, सूर्य का किरण के किरण लगा उसमें। तो तुरंत पुलिस गया, उस पुटली को खोला, देखा सोने का थाली यही पर है। उस स्वामी स्त्री को तुरंत अरेस्ट कर लिया, अच्छा पिटाई किया पुलिस लोग, लेकर जेल में डाल दिया। और जेल में जब डाल दिया, बच्चे लोग रो रहे हैं सब लोग, फिर भगवान तुरंत राजा को पास पहुंच गया, सपन राजा को उसी दिन में राजा को सोला के राजा को सपनों में आए, आके बोला देखो तुम्हारा घर में अगर कोई रिलेटिव आता है, आत्मस्वजन आता है, तुम उसको खिलाते कि नहीं? हाँ खिलाता हूँ प्रभु, क्यों नहीं, हमारा घर में कोई बंधु आता है, आत्म रिलेटिव आता है, तो मैं उसको जरूर खिलाता हूँ। तो हमारा घर में कोई रिलेटिव आया है और हम उनको खिलाया है, तो तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा आदमी की उसको पकड़ के लेके गया, जेल में बंदी बनाया, वो हमारा बंधु है, बंधु मानती है, वो मेरा दोस्त है, वो आप वो और किसी को दोस्त नहीं मानते, मुझे दोस्त मानते हैं, और वो मेरा पास आया तीन दिन बिना खा के आए हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है उसको खिलाना, तो मैं खिलाया, अपना थाली में खिलाया, तुम्हारा थाली तुम्हारा बाप का थाली में खिलाया। तो भगवान उसको बहुत डांटा है और बोला अभी तुरंत जाओ उसको जाके मुक्त कर दो हो, और हाथी का पीठ में पूरा पागड़ी बांधकर उसको घुमाओ, और दक्षिण द्वार का साइड में एक बिल्डिंग का नाम लिया भगवान, उस बिल्डिंग में तुम जैसा रहते हो वैसा रहने का व्यवस्था करो, मेरा भक्तों को मैं जैसा रहता हूं वैसा रहने का व्यवस्था करो जिंदगी भर। ते देखिए भगवान का बंधुत्व है, भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं अपना भक्त का। इसलिए बताते कहा चिंता मम जीवन यदि हरिर विश्वम्भर घियते, हरि विश्वम्भर नाम है, सबको पालन पोषण करते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, सबको सलाते हैं, वही विश्वम्भर। जो उसका शरण में नहीं आया उसका भी व्यवस्था करते भगवान, और जो उसका शरण में आया उसको क्यों नहीं करेंगे? कोई क्वेश्चन है किसी का? सच का स्टोरी है। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। সংশয় নেই হোনা চাইয়ে, কে ভগবান কা শক্তি মে আপকো বিশ্বাস নেই হ্যা, ভগবান ভক্ত বৎসল হ্যায়, আরে সাস কা স্টোরি হ্যায়, আপ জগন্নাথ লীলামৃত মে আপ পায়েঙ্গে ইয়ে। ইসলিয়ে সংশয় নেই করনা চাইয়ে, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। माता जी का क्वेश्चन है, जो ब्याज में पैसा, जो इंटरेस्ट का पैसा है, उसमें क्या पाप लगता कि नहीं है? मैं इसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकता हूं। सॉरी। अपने आप को पूछिए, आप आंसर मिल जाएगा, बहुत सीधा है आंसर, सब लोग को मालूम है, अपने आप को पूछिए। हरे कृष्ण। গন্ত্রা শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, সমবেদ ভক্তবৃন্দ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল, হরে কৃষ্ণ, শিল প্রভুপাদ কি জয়।